हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कृषा से मिलने के लिए पहले शब्द और सारा युग के घर पर आए थे। उसके बाद हर्षवर्धन राणा और हरलीन भी वहीं पर आ गए। वो युग और कृषा के रिश्ते को लेकर परेशान हो रहे थे, लेकिन युग ने उन्हें सब कुछ बताकर कन्विंस कर लिया था। पूरी बातें हो जाने के बाद हरलीन ने रात को वहीं पर रुकने की इच्छा जताई, तो मजबूरन युग को हाँ कहना पड़ा। रात के लगभग एक के करीब युग के विला के गार्डन एरिया के एक कोने में कैंप फायर जली हुई थी और उसके आसपास सब बैठे हुए थे। युग उनके बीच मौजूद नहीं था। शब्द और सारा एक साथ थे। हरलीन उन्हीं के पास में थोड़ा दूर बैठी थी, तो वहीं हर्षवर्धन राणा और कृषा एक तरफ बैठे थे। कृषा ने बोरियत भरे लहजे से कहा, हम पांच लोग हैं, कोई गेम भी नहीं खेल सकते। या तो चार होने चाहिए थे या फिर छह। वैसे भी युग यहाँ पर होता तो मेरे थोड़े हारने के चांसेस होते हैं। मुझे नहीं लगता दादू मुझे किसी भी गेम में जिता पाएंगे। बोलते हुए कृषा ने तिरछी निगाहों से हर्षवर्धन की तरफ देखा। हर्षवर्धन को कृषा के बात तीर की तरह लगी। वो चिढ़ते हुए बोले, अच्छा मैं नहीं जीत सकता? तुम अभी मुझे जानती नहीं हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम चारों एक तरफ हो जाओ और मैं अकेला, फिर भी मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है दादू। वैसे भी आप आजकल की जेनरेशन को जानते नहीं हो। अब आपके तरीके पुराने हो चुके हैं और किसी काम के नहीं रहे हैं, कृषा ने मुंह बनाते हुए कहा। कृषा का मुंह बना देखकर हर्षवर्धन ने भी उसकी तरफ मुंह बिगाड़ा और उसी लहजे में कहा, हाँ दिख रही है मुझे आज की जेनरेशन। एक छोटी सी चोट क्या लगी, तुम्हारा पति तुम्हें गोद में उठाकर घूम रहा है, खुद से चला तक नहीं जा रहा तुमसे। एक तरफ युग है जिसे गोली लगने के बावजूद एहसास तक नहीं हो रहा कि उसे चोट तक लगी है, और तुम्हें एक छोटी सी चिंगारी लगी थी फिर भी तुम्हारी ये हालत हो रही है। हाँ, बिकॉज आई एम माफिया प्रिंसेस और मुझे बहुत प्यार से पाला गया है, कृषा ने पूरे एटीट्यूड से बालों को झटकते हुए जवाब दिया। अरे काहे की माफिया प्रिंसेस, तुम तो प्रिंसेस हो प्रिंसेस। कहा था मैंने आदि से, इस लड़की को मेरे पास छोड़ दो, मैं अच्छे से इसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करूंगा, लेकिन देखो क्या बनाकर छोड़ दिया उसने तुम्हें, हर्षवर्धन ने सिर हिलाकर कहा। हर्षवर्धन और कृषा बच्चों की तरह बहस कर रहे थे। शब्द, सारा और हरलीन उनकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने बीच में उन्हें चुप करने की भी कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन और कृषा दोनों ने ही उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उनके चुप न होने पर शब्द ने हरलीन की तरफ देखकर कहा, हम तीनों यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता ये दोनों हमारी सुनेंगे भी। हाँ पापा भी ना, कृषा के साथ आते ही बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट करने लगते हैं, हरलीन ने भी हैरानी जताते हुए कहा। वहीं सारा के फेस पर हल्की स्माइल थी। उसने हर्षवर्धन और कृषा की तरफ देखकर कहा, दादू की आंखों से पता चलता है कि वो कृषा से बहुत प्यार करते हैं। फिर बोलते हुए उसने हरलीन की तरफ देखकर पूछा, राणा फैमिली और सिंघानिया फैमिली की दुश्मनी पूरे माफिया वर्ल्ड में फेमस है, कभी तो इनके बीच में अच्छे रिलेशन रहे होंगे, जरूर उस टाइम में दादू ने कृषा को बहुत प्यार किया होगा। हरलीन ने मुस्कुराते हुए उसकी बात पर हामी भरी और कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना, जब कृषा पैदा हुई थी तब डैडी जी ने पूरे हॉस्पिटल में पार्टी दी थी, हालांकि उन्हें कृतिका पसंद नहीं थी, ऊपर से कृषा बिल्कुल कृतिका जैसी लगती थी, फिर भी वो उससे बहुत प्यार करते थे। पहले विराट और छाया न्यूयॉर्क में रहते थे और सिंघानिया फैमिली मुंबई में। युग और शब्द अपने मॉम डैड के पास रहने की वजह से पापा को हमेशा से एक बच्चे की कमी खलती थी, इसलिए कृषा ज्यादातर हमारे घर पर ही रहती थी और पापा उसे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते थे। हरलीन उन्हें सब बता रही थी, तभी वो बोलते हुए रुक गई। उन तीनों ने देखा हर्षवर्धन और कृषा एक दूसरे के पास खिसक गए थे और पॉपकॉर्न के पैकेट के लिए झगड़ा कर रहे थे। कृषा उनसे पैकेट छीनते हुए बोली, देखो दादू आपका बहुत हो गया है, आप बड़े हो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों के साथ अन्याय करोगे। कब से मुझे नाजुक नाजुक का टॉन्ट मारे जा रहे हो, अगर मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया तो वो हो। अरे चुप करो तुम, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, दादा हूँ मैं उसका, हर्षवर्धन ने कृषा की बात बीच में काटते हुए कहा और फिर उसके हाथ से पॉपकॉर्न छीनकर उसे खाने लगा। आप बहुत बुरे हो, जाइए मुझे आपसे बात नहीं करनी, शेयरिंग करनी आती है या नहीं, कृषा ने नाराज होते हुए कहा और फिर वो हर्षवर्धन से दूर जाने लगी। हर्षवर्धन ने कृषा की तरफ पैकेट बढ़ाते हुए कहा, अच्छा ठीक है खा लो, यहाँ पर 10 पैकेट पड़े हुए हैं, लेकिन इस लड़की को मेरे पैकेट से ही पॉपकॉर्न खाना है। उनके इस जेस्चर पर कृषा खुश हो गई और वापस उनके पास खिसक गई। उन्हें फिर से एक साथ खुश देखकर हरलीन को काफी अच्छा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दिन वापस लौट आए हों। वहीं दूसरी तरफ इनसे अलग युग मलिक के साथ अपने मीटिंग रूम में था। मलिक को आने में टाइम लग रहा था क्योंकि युग ने उससे कुछ मंगवाया था। मलिक का वेट करते हुए युग कॉफी पी रहा था, तभी मलिक वहां आया और आते ही हैरानी जताते हुए पूछा, आपने बाहर कहा था कि आप केस को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन यहां तो कुछ और ही चल रहा है। आपने मुझसे चौथे पड़ाव का मैप क्यों मंगवाया है? क्योंकि केस मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा। मुझे कैसे भी करके इस केस को दो हियरिंग तक आगे लेकर जाना है और तब तक इन सातों पड़ाव को पार करना है, युग ने बताया और फिर मैप को निकालकर देखने लगा। वो मैप काफी पहले तैयार किए थे, इसलिए डिजिटल न होने की वजह से उनका पेपर प्रिंट था। युग उस नक्शे को गौर से देख रहा था, फिर उसने मलिक के चेहरे की तरफ देखा तो उस पर अभी भी हैरानी के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे मलिक को अपने सवालों के जवाब नहीं मिले। युग ने मलिक की तरफ सिर हिलाया और फिर अपने हाथ बांधते हुए कहा, मुझे कंफ्यूजिंग चेहरों से सख्त चिढ़ है। तुम्हें जो पूछना है वो पूछ सकते हो, मुझे काम पर पूरा फोकस चाहिए। जब तक तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, तुम्हारे दिमाग में वही सब घूमता रहेगा। मलिक ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, आप केस खत्म होने से पहले सातों पड़ावों को पार क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको ये लगता है कि आप ये केस जीत नहीं पाएंगे, या आप इसे जीतना ही नहीं चाहते? मलिक के सवाल बिल्कुल सही थे। युग बिना किसी वजह के कोई भी स्टेप नहीं उठाता था। फिलहाल के वक्त को देखते हुए उसे रुहान खुराना के किए गए केस को जितना ज्यादा जरूरी था, लेकिन वो अभी भी पड़ाव को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था। इससे एक बात साफ थी कि युग के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। मलिक के सवाल सुनकर युग के फेस पर ईविल स्माइल थी, जिससे मलिक को साफ हो गया था कि उसने अभी अभी जो कहा था वो सच था। शायद युग रुहान खुराना से ये केस जीतना ही नहीं चाहता था।